میشه. پدرش گروه سامی شیوکی هومه اردانگینی.
निर्माण मेरे अस्तित्व का खंडन न हो दायित्व का, अब ना कोई अवरोध हो, अब मेरे मन का बोध। गिरिजल में ऊर्जा शिव से है, गौरी से शिव में शक्ति है, ये दो नहीं है एक है, अनुभूति सम अभिव्यक्ति है। हर श्वास शिव के नाम है, यह प्रेम भी अविराम है। शिव धैर्य तो संयम शिवा, है नयन शिव तो दृष्टि शिवा। शिव शक्ति से ही पूर्ण है, शक्ति के वो सिंदूर है, गौरी के गौरव के लिए जो हो रहे अब दूर है। कोई तोड़ना है बिछोह का, नहीं मोल मन के मोह का। शिव जाने की है कालिका, अस्तित्व आदि शक्ति का। विचलित करे न भावना, नहीं दे सके कोई सांत्वना। नियति है बंधन से परे, जो रच दिया सो वो करे। गिरिजल में ऊर्जा शिव से, गौरी से शिव में शक्ति है, ये दो नहीं है एक है, अनुभूति सम अभिव्यक्ति है। हर श्वास शिव के नाम है, यह प्रेम भी अविराम है। शिव धैर्य तो संयम शिव, अनैन शिव तो दृष्टि शिव। शिव और शक्ति। ये दो नहीं है एक है। स्वयं के शक्ति रूप को जानना, स्वयं के अस्तित्व को जानना, ये जीवन का लक्ष्य है। मैं हूं पर कौन? शक्ति। कमजोर नहीं, दुखी नहीं, उदास नहीं, उलझन में नहीं, मेहनत में नहीं, पीड़ा में नहीं, निराशा में नहीं। यदि मैं शक्ति हूं, ऊर्जावान हूं, तो इस संसार का कोई दुख मुझे छू नहीं सकता, मेरे पास नहीं आ सकता। संसार का कोई षड्यंत्र मुझे हिला नहीं सकता, विचलित नहीं कर सकता। संसार का कोई रोग, कोई बीमारी, कोई विकार मुझे टच नहीं कर सकता। मैं शक्ति हूं। अपने स्वरूप का अनुभव, अपने स्वरूप की पहचान और उसमें स्थित रहना। और यदि मैं शक्ति हूं, तो शक्ति निरंतर शिव के साथ है, शिव से एक है। शिव और शक्ति अलग अलग नहीं। हर श्वास शिव के नाम है, यह प्रेम भी अविराम है। शिव धैर्य तो संयम शिवा, है नयन शिव तो दृष्टि शिवा। शिव की हूं मैं अर्धांगिनी, निर्माण मेरे अस्तित्व का खंडन न हो दायित्व का, अब ना कोई अवरोध हो, अब मेरे मन का बोध हो। गिरिजल में ऊर्जा शिव से है, गौरी में शिव से शक्ति है, ये दो नहीं एक है, अनुभूति सम अभिव्यक्ति है। एक होने का अनुभव, मिलन का अनुभव, साथ का अनुभव, साथ का अनुभव, मिलन का अनुभव, एक रहने का अनुभव, शक्तिशाली होने का अनुभव, ये इस आध्यात्मिक जीवन का लक्ष्य भी है और मार्ग। यात्रा ही मार्ग है, यात्रा ही मंजिल है। अध्यात्म और संसार की यात्राओं में यह अंतर है। यहाँ पर जो मार्ग है वो मार्ग ही क्या है, मंजिल, जो गंतव्य को प्राप्त करने की खुशी है वो मार्ग में भी है। द पाथ इज द डेस्टिनेशन। ऐसा नहीं कि कहीं पहुंचेंगे और फिर खुशी मिलेगी, कहीं पहुंचेंगे और फिर प्राप्ति होगी। ये मार्ग ही इतना सुखकर है, प्रीतिकर है, आनंददायी है। द पाथ शुड बिकम ब्लिस। मार्ग आनंद बन जाए, यात्रा ही आनंद है। फिर आज पहुंचे, कल पहुंचे, कब पहुंचे, नहीं पहुंचे, उसकी कोई चिंता नहीं, क्योंकि ये मार्ग सुखदायी है। तो अध्यात्म की शुरुआत भी इस प्रश्न से है, मैं कौन हूं, और अंत भी कि मैं कौन हूं, इसी को जानना। सेवा इसके बाद का विषय है। सेवा बहुत बड़ी क्रांति है, परोपकार, पर इतनी बड़ी क्रांति बिना आत्मज्ञान के हो नहीं सकती। किसी राजा ने सोचा, मुझे अपना उत्तराधिकारी चुनना है, तीन बेटे हैं, तीनों को बुलाया और एक एक से पूछा, पिछले एक वर्ष में ऐसा तुमने कौन सा महानतम कार्य किया है, कोई एक कार्य हो तो बताओ, याद करके बताओ, सोच के बताओ। पहले ने कहा, किसी एक धनवान व्यक्ति ने किसी यात्रा पर जाने से पहले मेरे पास बहुत सारा धन दे दिया। उसने उस धन को गिना भी नहीं, उसमें बहुत सारी सोने की अशर्फियां थी, वो कितनी थी उसे भी नहीं पता, और बिना किसी लिखा पढ़ी के वो सारा धन मेरे पास सौंप गया। और उसने कहा, आकर मैं ले लूंगा, मैं चाहता तो वो सारा धन हड़प सकता था या उसमें से कुछ अशर्फियां निकाल सकता था, परंतु मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। वो जब वापस आया कई मास के बाद, तो मैंने उसे वो सारा धन लौटा दिया। राजा ने कहा, ये तुमने अच्छा किया कि धन लौटा दिया, पर सोचो यदि तुमने वो धन चुरा लिया होता या कुछ अशर्फिया अपने पास रख ली होती, क्या तुम्हारे अंदर आत्मग्लानी नहीं आती? क्या तुम्हें जीवन भर ये पश्चाताप नहीं होता कि मैंने चोरी की है? क्या चोरी का वो भाव तुम्हें नहीं सता था? वो कहता है, हाँ, तो इसमें तुमने महान कौन सा कार्य किया? ये जो तुमने किया अपने लिए किया, तुमने स्वयं को चोरी से बचाने के लिए किया, तुमने स्वयं को आत्मग्लानी से बचाने के लिए, पश्चाताप से बचाने के लिए ये किया, तो इसमें महानता तो कुछ हुई नहीं। दूसरे से कहता है राजा, तुमने क्या किया, कोई एक महान कार्य बताओ, महानतम कार्य। वो कहता है दूसरा बेटा, कि मैं कहीं से गुजर रहा था और अचानक मैंने देखा कि कोई एक व्यक्ति डूब रहा है नदी में। मैं जल्दी में था, मैं चाहता था तो चुपचाप निकल जाता था, किसी को पता भी नहीं चलता था, पर मैंने रुककर उस डूबते हुए व्यक्ति की मदद की, उसे बाहर निकाला, उसे बचाया। राजा ने कहा, तुमने बहुत अच्छा काम किया, परंतु यदि तुम बिना उसको बचाए आगे निकल गए होते तो तुम्हारा मन नहीं खाता जीवन भर, कि तुम बचा सकते थे पर नहीं बचाए। उसका प्रेत, उसका भूत तुम्हारा पीछा करता जीवन भर। दूसरा माइक दे, आवाज आ रहा है ठीक से? आ रहा है? ताकत कम है तो राजा उससे कहता है कि तुमने जो कुछ किया अपने लिए किया, तुमने उसको जाकर बचाया, इसमें महानता कैसी? तुमने स्वयं को आत्मग्लानि से बचाया मात्र है, बस और कुछ भी नहीं किया। राजा तीसरे से कहता है तुमने क्या किया? दोनों रखने?
हेलो, ये ठीक है। तो राजा तीसरे से पूछता है कि तुमने क्या किया बताओ। तो वो कहता है मैं एक रास्ते से जा रहा था और देखा एक व्यक्ति सो रहा है और करवट उस वो जो खाई थी बस उसको लग के वो सो रहा था। वो अगर एक करवट भी ले लेता तो नीचे खाई में गिर जाता। अगर मैं उसके पास बचाने भी जाता और मेरी आवाज से भी अगर वो चौंक के उठ जाता तो भी वो नीचे खाई में गिर जाता। अगर मैं भाग भी जाता बिना उसको बचाए, अगर मैं चिल्लाता भी तो वो चिल्लाने की आवाज से उठता और उठते ही नीचे खाई में गिर जाता। ऐसी अवस्था थी। तो मैं ना उसको बचा सकता था ना मैं भाग सकता था, पर मैंने क्या किया? मैंने अपनी चप्पल निकाल कर बाहर रखी और फिर बहुत धीरे धीरे गया, बिना पाँव की आवाज करते हुए, और फिर उसे जगाया और उसे बचाया। और उसने क्या किया? जैसे ही वो जागा और उठा तुरंत मैंने देखा कि ये तो मेरा परम शत्रु है, और फिर वो मुझे गालियां देने लगा। इतनी मुझे गालियां देने लगा कि इसने मुझे यहां पर भी नहीं छोड़ा, मैं तो आया ही मरने के लिए था, और अभी भी गांव में वो मेरे खिलाफ प्रचार कर रहा है कि ये मेरा दुश्मन है, जो भी मैं करता हूं मेरे ये बीच में आता है। तो ये काम मैंने किया। राजा ने कहा तुम उन दोनों से बेहतर हो, परंतु मैं देख रहा हूं जब तुम ये बता रहे हो ना, तुम्हारी छाती कैसे फूली हुई है, आंखों में एक अजीब सी चमक है तुम्हारे, एक सूक्ष्म अहंकार ने तुम्हें भर रखा है। ऐसा बता रहे हो जैसे तुमने बहुत ही महान कार्य किया है कोई। तुमने बचाया उसको नहीं, अपने आप को ही बचाया है। तुमने परोपकार तो किया है, पर परोपकार के साथ मैं देख रहा हूं कि तुम्हारा हृदय कितना अहंकार से भरा हुआ है। राजा कहता है तुम भी मेरे काम के नहीं, मुझे कोई चौथा ही ढूंढना पड़ेगा। अब जो भी हम करते हैं कितना अहंकार भर जाता है। गरीबों की सेवा करते हैं, मरीजों की सेवा करते हैं, अस्पताल में कुछ भी करते हैं तो क्या भर जाता है? अहंकार, अभिमान। किसी को ज्ञान क्या सुना दिया, जीवन भर उसको देखने के बाद पहला विचार आता है कि इसको किसने ज्ञान मिलाया, इसका कोर्स किसने किया था, आज जो ऊंचाई पर चढ़ रहा है, बुलंदियों पर चढ़ रहा है, हमारे यहां से निकला है। पॉजिटिव नशा अच्छी बात है, पर अहंकार वाला नशा, परोपकार बहुत बड़ी क्रांति है, सेवा बहुत बड़ी क्रांति है, और इतनी बड़ी क्रांति आत्मज्ञान से पहले हो ही नहीं सकती, और अहंकार आत्मज्ञान का शत्रु है। इसलिए यह जानना बहुत आवश्यक है कि मैं कौन हूं, और जो कुछ मैंने किया या जो कुछ मैं कर रहा हूं वो केवल अहंकार की तृप्ति मात्र तो नहीं। मैं किसको भर रहा हूं? अपने अहंकार को ही भरे जा रहा हूं। कुछ भी करो उसमें अहंकार भर जाता है, कुछ भी सेवा करो कितना मुश्किल है कि अहंकार से हम अछूते रहे। हर चीज हमें किससे भरती है? अहंकार से। अध्यात्म यात्रा है स्वयं को जो हूं जैसा हूं जानने की, स्वयं के संपूर्ण स्वरूप में स्वयं को स्वीकार करना, अपनी सभी कमियों के साथ, अपनी सभी अहंकार के साथ, अपने सभी पापों के साथ, अपनी सभी गलतियों के साथ, अपनी भूल को स्वीकार करना, अपने लगाव को स्वीकार करना, यह अध्यात्म है। यात्रा दुर्गम कठिन है, सहज राजयोग, ब्रैकेट में जो पहली मुरली है आज, बहुत बहुत पावरफुल है, जिस पर आज टेस्ट है। आठ छ 72 की ये मुरली है, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। एक योगी कैसा होना चाहिए, उसकी निशानियां उसमें है। निंदा हो जाए तो क्या करना, अपमान हो जाए तो क्या करना, तो इसको बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से अध्ययन करेंगे। और लक्ष्य रखना है कि पढ़कर तुरंत एग्जाम नहीं देनी है, गैप, सुबह पढ़ लो एक बार, टाइम छोड़ दो, फिर रिवाइज करो, एटलीस्ट 3 रिवीजन होनी चाहिए, 3 रीडिंग्स, उसके बाद ही एग्जाम को टच करना है। सीधा अभी अभी पढ़ लिया और तुरंत एग्जाम दे दिया, बधाई हो। इसमें कुछ नहीं होना है, पहले पढ़ना, एकांत में पढ़ना, फिर सेकंड रीडिंग कुछ समय बाद, थर्ड रीडिंग और एक कुछ समय बाद, और उसके बाद में थोड़ा और गैप, और बिना रीडिंग के, बिना इमीडिएट पढ़े, फिर एग्जाम अटेम्प्ट करना है। और हर बार किसी दूसरी विधि से पढ़ना है, एक बार पढ़ लिया, कीवर्ड्स देख लिए, मुख्य मुख्य क्या है इसमें वो समझ लिया, सार क्या है ये सोचो कि मुझे कुछ संदेश देना है किसी को, ठीक है, तो मैं क्या संदेश दूंगा, वो संदेश नया होना चाहिए। और ये वो मुरली है जो पढ़कर मुझे संदेश देना है। सोचो ऐसे लोगों को समझाना है जिनको इसके बारे में कुछ भी पता नहीं, तो किस रीति से मैं समझाऊंगा बताऊंगा। मुरली बुक ये वाली निकालो, 8-6, तो किस रीति से मैं इसको बताऊंगा समझाऊंगा, क्या है इसमें, संपूर्ण स्टेज की परख क्या है, संपूर्ण स्टेज किसे कहते हैं, मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग क्या है। सीधा मुरली देखी और पढ़ना नहीं चालू करना, थोड़ा सा उसका क्या करना है, फर्स्ट स्टेप अवलोकन, कब की है, 72 की है। तो पहला प्रश्न, उस समय मैं कहाँ था, धरती पर इसी शरीर में था या किसी और शरीर में। दूसरा, अगर इसी शरीर में था तो उस समय क्या कर रहा था। तीसरा, फिर देखना टॉपिक क्या है, संपूर्ण स्टेज की परख, मुझे इसके विषय में क्या क्या पता है, संपूर्ण स्टेज के बारे में मैं क्या जानता हूँ, बाप समान स्थिति, कर्माति स्थिति, संपूर्ण रहम दिल, संपूर्ण निश्चय बुद्धि, एक रस, ये सारी चीजें मुझे पता है, व्यर्थ से मुक्त, कर्मातीत, संपूर्ण, समान, बहुत सारे शब्द इकट्ठे कर रखे हैं, शब्दों का स्टॉक बहुत है परंतु अनुभव कम है, तो ये मुझे पता है। उसके बाद में एक नजर घुमाएंगे उसके ऊपर, कहाँ क्या क्या है, कितने पैराग्राफ्स है, 3 पैराग्राफ्स, कभी कभी पुराने पिछले पैर लास्ट पैराग्राफ से चालू करो, अगर बैलेंस ठीक नहीं होता तो हिलते जुलते का भी जो खेल करते वह साक्षी हो देखो तो अपने ऊपर भी बहुत हंसी आवे। फिर ये पढ़ लिया, फिर यहाँ से पढ़ लिया, एकांत में रमणीकता गायब नहीं होनी चाहिए, मतलब बैलेंस बैलेंस की लिस्ट। तो देख लिया कि ये पूरी मुरली बैलेंस पर है, नट कहीं नट दिखाई दे रहा है, कहीं जय पराजय निंदा स्तुति सुख दुख दिखाई दे रहा है। बैलेंस की लिस्ट बनाओ, ज्ञान योग में किन किन चीजों का बैलेंस चाहिए, 100 की लिस्ट निकल सकती है, इतनी चीजें हैं। ये हो गया, फिर छोड़ दो उसको, फिर थोड़ी देर के बाद फिर आना है, फिर एक बार उसको फास्ट 5 मिनट सेट करना है टाइम, या 7 मिनट 5 मिनट, और फटाफट उसको पढ़ लेना है बहुत फास्ट। जितना धीरे पढ़ेंगे उतनी बुद्धि भटकेगी, स्पीड रीडिंग। फटाफट फटाफट पढ़ लिया, छोड़ दिया। ऐसी 2 या 3 कॉपी बुक्स रखो, एक घर पर, एक ऑफिस पे, अलग अलग जगह पर। अलग अलग जगह पर, और अगर नहीं कर सकते तो मोबाइल तो है, मोबाइल में खोल के रखो, फटाफट से उसको जब भी टाइम मिले जस्ट गो थ्रू, और फिर पेन पेपर के साथ बैठो कि मुख्य मुख्य क्या आ रहा है इसमें, अच्छा ये है ये है ये है, फिर इसको छोड़ दो, फिर जो नोट्स हमने बनाए हैं उसको पढ़ते रहना है। तो ये मुरली बहुत स्ट्रांग है और बहुत अच्छी है, बहुत गहरी भी है। दो दो चीजों का बैलेंस इसमें बताया है, हर चीज में, बहुत ज्यादा रमणीकता भी नहीं तो बहुत ज्यादा गंभीरता भी नहीं, बीच का मार्ग, ना अति ऊंचम ना अति नीचम, बीच का मार्ग। तो आज ये मुरली पढ़नी है और इस पर टेस्ट देनी है, ठीक है, ये पहला काम। दूसरा, इस मुरली की तरफ आते हैं, 31 मई 1972, लोकेशंस 51 से लेके तो 60 तक। एक बार लोकेशंस फिर से रिवाइज करते हैं, तो पहले 3 मंदिर हैं, 3 मंदिर के पीछे एक शमशान है, फिर 3 मंदिर है, 3 मंदिरों के पीछे एक नदी है, तीर्थ स्थान है, ब्रह्मा मंदिर है। आंखें बंद, मन की आंखों में एक बार ये 10 सीन्स विजुलाइज करेंगे। सबसे पहले दिखाई दे रहा है दुर्गा मंदिर, देखो मंदिर को, अंदर दुर्गा देवी अष्टभुजाधारी, बाजू में एक काली का मंदिर है। मन की आंखों में देखेंगे काली माँ, महाकाली विकराल रूप, उसके बाजू में देखेंगे एक शीतला माँ, शीतल तरंगे फैल रही है मंदिर में। 3 मंदिर, उसके पीछे एक शमशान, वीरान सा, सुनसान सा। शमशान को क्रॉस किया और फिर पहुंचे गणेश मंदिर, गणेश जी मन की आंखों से विजुलाइज करेंगे, गणपति। बाजू में हनुमान मंदिर, मन की आंखों से देखेंगे, रंग को देखेंगे, उसके बाजू में एक और मंदिर, शंकर जी ध्यान मग्न अवस्था, तीनों मंदिरों के पीछे एक नदी, बड़ी सी नदी, नदी में हम बैठे, क्रॉस किया और पहुंचे एक तीर्थ स्थान पर, बड़ा सा तीर्थ स्थान है और उसमें एक सबसे बड़ा ब्रह्मा का मंदिर है। मंदिर में प्रवेश, देखेंगे ब्रह्मा को, आंखें खोलें। तो ये है हमारे आज के 10 लोकेशंस, और ये लोकेशंस हम कई बार रिवाइज कर चुके हैं, इसलिए उसको बहुत फास्ट लिया है। ऐसे लोकेशंस फिक्स करके रखना है, मेमोरी पैलेस, मन में ही एक पैलेस क्रिएट कर दिया। फिर कुछ भी चीज है जो हमको याद रखनी है, एक एक चीज एक एक मंदिर के अंदर एक एक लोकेशंस में डालते जाएंगे और उसकी एक छोटी सी स्टोरी बना देंगे, उसको विजुलाइज करेंगे। एक बार देख लिया मन की आंखों से कि वो परमानेंट हो जाता है, फिर उसको जीवन भर हम नहीं भूलते अगर उसको रिवाइज करते रहेंगे बीच बीच में। तो आज की मुरली की तरफ आते हैं। सबसे पहला हमारा लोकेशन है दुर्गा मंदिर। तो ये पूरी मुरली ही शिव शक्ति पर है। सदा अपने आप को शिव शक्ति समझकर हर कर्म करती हो। अपने अलंकार और अष्टभुजाधारी मूर्त सदा अपने सामने रहते हैं। अष्टभुजाधारी अर्थात अष्ट शक्तिवान, तो सदा अपने अष्ट शक्ति स्वरूप स्पष्ट रूप में दिखाई देते हैं। शक्तियों का गायन है शिव में शक्तियां। तो अब इसमें ये सोचना है, जो दुर्गा है वो कौन है? मैं हूं। तो मैं शक्ति हूं, वो शिव है। शिव और शक्ति दो अलग नहीं, एक है। अगर कोई शक्ति की शरण में आ जाए संपूर्ण रूप से और शिव की जरा भी पूजा ना करे, भक्ति मार्ग केवल शक्ति की शरण में आ गया, तो क्या शिव उसे अस्वीकार करेंगे? करना ही पड़ेगा, क्योंकि जहां शक्ति है वहां शिव है, जहां शिव है वहां शक्ति है। संसार में क्यों श्री राधे की भक्ति इतनी प्रसिद्ध और प्रचलित हो गई? राधे राधे नाम कहां से आ गया? क्योंकि कृष्ण को पहुंच, कृष्ण तक पहुंचना बहुत कठिन है, पर राधे प्रेममयी है, वो सबको स्वीकार कर लेती है। इसलिए राधे की शरण में चले गए, क्योंकि राधे ने जिसको स्वीकार कर लिया, कृष्ण को स्वीकार करना ही पड़ेगा। इसलिए नया सांप्रदाय प्रांत ही आ गया, राधे 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 राधे, राधे के भक्त हैं। तो सबसे पहली बात हम क्या याद रखेंगे? मैं कौन हूं? शक्ति हूं। मैं कौन हूं? शिव शक्ति हूं, शिव में ही शक्ति हूं, शिव की शिवा हूं। शिव धैर्य तो संयम शिवा, शिव नयन तो दृष्टि शिवा, ये दो नहीं एक है। बस इसी का अभ्यास करते रहना है जिन दिन भर। मैं दुर्गा हूं, मैं शक्ति हूं, मैं अष्टभुजाधारी हूं, मैं सिंहवाहिनी हूं, मैं शक्तिशाली हूं। बस बोलते रहना है, भीतर ही भीतर दोहराते रहना है, मैं शक्ति हूं, मैं शक्ति हूं, मैं शक्ति हूं। तो भीतर जो निगेटिव सेल्फ टॉक चालू रहती है ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। मैं शक्ति हूं, मैं शक्ति हूं, मैं शक्ति हूं, मैं शिव शक्ति हूं, शिव की जो शक्ति है वो मैं हूं, शिव की अर्धांगिनी हूं, शिव प्रिया हूं। तो दुर्गा मंदिर में मैं शिव शक्ति हूं, अष्टभुजाधारी हूं। फिर आ जाओ उसके बाजू में कौन सा मंदिर है? काली मंदिर। दोनों ही साथ है तो कोई आगे कुछ नहीं कर सकता, ऐसी शक्ति के आगे कोई कुछ नहीं कर सकता। मैं कौन हूं? महाकाली हूं। कोई कैसा भी आ जाए, कितनी भी बड़ी माया आ जाए मेरे सामने, तो भी मैं हार खाने वाली नहीं। अगर हार होती है या माया का वार होता है तो क्या उस समय शिव शक्ति स्वरूप में स्थित हो, अपने अष्ट शक्ति या संपन्न संपूर्ण स्वरूप में स्थित हो? मेरे पास कितनी शक्ति है? 8 शक्तियां। तो आज का होमवर्क है 8 पावर कार्ड्स क्या बनाने हैं? 8 अलग अलग कार्ड बनाने हैं। क्या बनाने हैं? कार्ड। और आप सबको पता है ये यज्ञ का चित्र है अष्ट शक्ति वाला, सबको पता है। तो सबसे पहली शक्ति में इसमें क्या दिखा है? कछुआ। आपको जो कार्ड बनाना है उसको कछुआ नहीं दिखाना है, कुछ और डालो उसमें। आप किस शक्ति के लिए? संकीर्ण करने की जो शक्ति है, ये कछुआ भी बोर हो गया, कछुआ कहता है अब मेरा कुछ रिप्लेसमेंट करो, मुझे रिटायर होना है, तो वहां किसको डाल सकते हैं, इस पर आज चिंतन करना है। कौन सी शक्ति? संकीर्ण कर लेना क्या क्या हो सकता है, और वो जो होगा वो वस्तु होनी चाहिए, वो वस्तु होनी चाहिए या कोई चीज, मतलब थिंग, इट शुड बी एन ऑब्जेक्ट, नॉन लिविंग भी चलेगा, कुछ भी चलेगा, बट वो ऑब्जेक्ट होना चाहिए, कोई जानवर, कोई ऑब्जेक्ट या कुछ कुछ भी। वो एक्शन भी हो सकती है, वर्ब भी हो सकता है, नाउन भी हो सकता है, कोई क्रिया हो सकती, परंतु केवल क्रिया, मतलब ऐसा नहीं मैं चल रहा हूं वो वाला नहीं, या मेरे अंदर मैं अपने आप को संकीर्ण कर रहा हूं, ऐसा नहीं। इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट दिया है। ये जो चित्र है बहुत पावरफुल चित्र है, इसमें क्या दिया है, कछुआ, मतलब इसको देख के हमको पता चलता है वो क्या करता है, अपने आप को समेट लेता है। ये शक्ति, कौन सी शक्ति है ये, विड्रॉ कर लेना खुद को, जब अभी नहीं बताना है, वह आपका अपने तक रखो, आप लीक मत करो अपनी पॉइंट्स। यहां पर होमवर्क में भी कॉपी ये चल रही है, बहुत चीटिंग, दूसरों का होमवर्क अपने नाम से पोस्ट कर रहे हैं। चलो, तो कौन सी शक्ति, पावर टू विड्रॉ, इसमें थोड़ा चिंतन करना है, इस शक्ति के बारे में चिंतन करना है कि विड्रॉ करना मतलब क्या, और कब कब विड्रॉ करना चाहिए, जब बहुत ज्यादा हम जो जो बोल रहे उससे झगड़े ही झगड़े हो रहे, विस्तार ही विस्तार किए जा रहे, तो वहां विड्रॉ करने की आवश्यकता है। तो वहां पे कार्ड, एक कार्ड बनाना है, उस पर लिखना है पावर टू विड्रॉ, संकीर्ण करने की शक्ति, और वहां पे चित्र बनाना है। एक दूसरी शक्ति है पावर टू पैकअप, समेटने की शक्ति। यहाँ पे चित्र क्या दिया है, बैग बैगेज, उसको रिप्लेस करो, कुछ और चित्र डालो उसमें, क्या डालोगे, पैक, कुछ भी हो सकता है, वो सिपाही हो सकता है, कुछ भी, पर चित्र बदलना है। इसके लिए थोड़ा चिंतन, ये हमको रेडीमेड दिया गया है, उसी को हम चला रहे, अब अपना चिंतन करना है। तीसरी शक्ति है सहन करने की शक्ति, पेड़ ने बहुत सहन कर लिया, अब सहन करने वाले और भी बहुत लोग हैं, वो जेलस हो रहे, हम भी तो सहन कर रहे, तुम खाली पेड़ का ही नाम लेते रहते हो और पेड़ की गुणगान करते रहते हो। सहन कौन कौन करता है वो देखो, पावर टू टॉलरेट, सहन करने की शक्ति, उसमें चित्र बदल दो नीचे कार्ड में। अगला समा रहा है, समुद्र ही समा रहा है क्या केवल, और भी तो समाने वाली चीजें हैं, कौन कौन समा रहा है उसका चित्र डालो वहां पर। उसके बाद में परखने की शक्ति, वो एक ही है क्या प्रोफेशन जिसमें परखना पड़ता है, ये बाकी प्रोफेशन वाले सब बुद्धिहीन है क्या, निर्बुद्धि, कि जिनको परखना ही नहीं पड़ता है, परखना हर प्रोफेशन में परखना पड़ता है। उसके बाद में निर्णय, निर्णय तो केवल तराजू ही कही, उसका चिन्ह है क्या, और भी कोई चिन्ह है, उसके बारे में सोचना है। सामना करना, ये कौन सा चित्र है यहाँ पर, ये वो दिया और तूफान, ये कहानी है दिए और तूफान की, सामना करने की शक्ति। और लास्ट सहयोग, कोई दूसरा भी तो होगा, सहयोग का चित्र, क्या एक ही गोवर्धन है, कुछ भी, सहयोग तो किधर भी हो सकता है, पर उसका चित्र चेंज करना है, कुछ भी पर चित्र बदलना है, ये पांच आठ के आठ हो चित्र बदलने, ठीक है, और चित्र बदलते हुए चिंतन करना पड़ेगा। और क्या, प्रकृति में जाना, जाओ प्रकृति को देखो, चिड़िया को देखो, पहाड़ को देखो, झील को देखो, नदिया को देखो, थोड़ा एकांत में जाना पड़ेगा, थोड़ा मौन में जाना पड़ेगा, तब ये काम होगा। इंटरनेट में, गूगल में सर्च करने से काम नहीं होगा ये। खुद से निकालो कुछ, और कुछ तो नया। तो काली मंदिर में क्या कोई वार नहीं कर सकता, अगर एक शक्ति भी कम है तो वार होगा, हार होगी, पराजित पराजय होगी। तो सदा अष्ट शक्तियों को धारण करने वाले हैं वही क्या बनते हैं, अष्ट देवता।
तो अष्ट शक्ति, इस अष्टभुजा,
अष्टभुजा
अष्ट शक्ति, इष्ट देव, अष्ट देवता।
क्या क्या आया है? अष्टभुजा, अष्ट शक्ति, ये स्थूल, इससे क्या बनेंगे? इष्ट देव और अष्ट देव। अपनी शक्तियों का केवल चिंतन करने मात्र से शक्तियां जागृत होती है, केवल शक्तियों का चिंतन करने से। एक दिन में केवल, आज पूरा दिन केवल शक्तियों का चिंतन करेंगे, मुझे समाना है, अपने आप परिस्थिति आएगी। और संकल्प पहले से है कि मुझे इस बात को समाना है, इसे फैलाना नहीं है संगठन में। किसी एक की कमी या कमजोरी का मुझे आज अचानक पता चला, एकदम मार्केट में एकदम ताजी ताजी न्यूज, लेटेस्ट, और जो किसी को पता नहीं, ब्रेकिंग न्यूज बताने में जो खुशी होती है ना, अतीन्द्रिय सुख से भी ज्यादा खुशी है उसमें, कि किसी एक व्यक्ति की ऐसी कमजोरी पकड़ में आ गई है आज, और वो उसे जाके सुनाना कि जिसे उसके बारे में कुछ पता नहीं। जो किसी को महान योगी समझते हैं वो भोगी है बताने में, विद प्रूफ खुशी मिलती है। निंदा सुख का गायन है शास्त्रों में। तो आज शक्तियों का चिंतन करना है, समा लेना है मुझे सब अंदर, सहन करना है, सहन करना पड़ेगा। एक राजा जो होता है उसे ऐसा नहीं कि केवल वो प्रजा पर अधिकार ही जमाता है, उसे बहुत सारी चीजें सहनी पड़ती है। कई बार राज्य के हित में शरण जाना पड़ता है शत्रु के। तो मैं कौन हूं? काली मंदिर में एक शक्ति भी कम नहीं, अष्टभुजाधारी, अष्ट शक्तिधारी, इष्ट देव, अष्ट देवता। ये सब किस में याद करेंगे? काली मंदिर में। फिर आ जाओ शीतला देवी, शीतला देवी का मंदिर देखा है सबने? शीतला देवी का मंदिर सब जगह नहीं है, कुछ कुछ जगह है। तो बाबा ने कहा दो बातें याद रखो इसमें, इन शक्तियों की धारणा से स्वतः ही और सहज ही दो बातों का अनुभव होगा। कौन सी दो बातें? साथी और साक्षी। साक्षी अर्थात बिंदु रूप स्थिति, और साक्षी साथी अर्थात अव्यक्त स्थिति। नए अर्थ बताए, साथी और साक्षी। तो सोचो वो शीतला देवी मैं खुद हूं। शीतला देवी किस पे सवार है? गधा, गधे पे सवार है। हाथ में झाड़ू, फीवर गॉडेस, उसका चित्र देख लेना एक बार, ठीक है? तो शीतला देवी यहां दो बातें हैं, तो वो साथी भी है और साक्षी है। साक्षी अर्थात बीज रूप स्थिति, बिंदु रूप स्थिति में साक्षी होकर सारे खेल देख रहे। मंदिर में कितने लोग आते रहते हैं, हे माँ ऐसा कर दो, वैसा कर दो, ऐसा कर दो, वो कर दो, सब देखती रहती है, उसे कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है। गीता में लिखा है मेरे चार प्रकार के भक्त है, अर्जुन सुन, स्वार्थी, पहला भक्त स्वार्थी, रोज आता है पर मंदिर में, पर मांगता क्या है? पत्नी दे दे, घर दे दे, धन दे दे, ऐसा दे दे, वैसा दे दे, पर नियमित आता है, है तो मेरा ही भक्त, आता मेरे ही पास है, इसलिए भक्त मेरा ही हुआ, स्वार्थी। दूसरा होता है जो संकट के समय आता है बस, बाकी टाइम पे उसके पास टाइम नहीं, एग्जाम है अभी कल, हे प्रभु मेरे सब कुछ तुम ही हो, तुम्हारे अलावा मेरा तो कोई गति ही नहीं है, गतिस्त्वम गतिस्त्वम गतिस्त्वम, तुम ही सब कुछ हो, सर्वस्व हो। एग्जाम में पास हो गए, भूल गए, फेल हो गए तो गालियां, वो एक भक्त, वो भी मेरे ही भक्त, वो दूसरे प्रकार के भक्त, तो आते तो मेरे ही पास है। तो पहले जो है स्वार्थी, दूसरे जो है वो कभी कभी आने वाले, तीसरे जो है वो दिखावा के लिए आने वाले, ढोंगी, नाटक करने वाले, इसकी संख्या बहुत ज्यादा है। और इसको पहचानना बड़ा मुश्किल है, कौन ढोंगी है और कौन क्या है। और चौथे ज्ञानी भक्त, जो रियल केवल मुझे चाहते हैं, मेरे अतिरिक्त तो उन्हें और कुछ भी प्रिय नहीं, निस्वार्थ प्रेम है जिनका, लव फॉर लव सेक। ऐसा नहीं कि लव करो तो कुछ और मिलेगा, उन्हें कुछ और चाहिए ही नहीं, न मुक्ति चाहिए ना कुछ भी चाहिए नहीं, केवल मैं चाहिए बस, मैं और मेरा प्रेम, इसी में वो खुश रहते हैं। महाराष्ट्र के संत लिखते हैं कि मैं भक्ति कर रहा हूं और भक्ति करते करते कौन सी इच्छा उत्पन्न हो गई, मुक्त होने की। भक्ति वाचू न मुक्ति चीमत जड़ली रे व्याधि, विठला मीच खरा अपराधी। मैं ही अपराधी हूं, अब तक भक्ति कर रहा था और भक्ति करते करते क्या हो गया, मुक्त हो जाऊं ये इच्छा उत्पन्न हो गई, फिर तेरी भक्ति कैसे करूंगा, ये भी तो अपराध हुआ, मीच खरा अपराधी। तो दो बातें, कौन सी बातें, साक्षी और ये दिन भर करना है काम, कई बार साक्षी हो जाना है, हर बार कुछ इंटरफियर करना बोलना जरूरी नहीं है, चुप, और कई बार साथी, साथी अर्थात अव्यक्त स्थिति। फिर आ जाओ शमशान, कहाँ पहुंच गए, ये तीन क्रॉस कर दिया, अब शमशान से चलना है, अकेले चलना है। बाबा ने कहा है इसमें घबराना नहीं है, हाथ और साथ, हाथ और साथ, तो हाथ किसका चलते समय, श्रीमद का हाथ, और साथ किसका, बुद्धि की लगन, किसका साथ, बुद्धि की लगन का साथ, और हाथ किसका, श्रीमद का। और यहां उदाहरण दिया है, भक्ति में भी उदाहरण कैसे दिखाते, हाथ रखा हुआ है। तो सोचो ये शमशान अर्थात क्या, अकेले मैं गुजर रहा हूं एक जगह से, कोई भी साथी नहीं है, परंतु हाथ और साथ साथ है, श्रीमत अगर साथ है, मर्यादा है अगर साथ है, तो कुछ नहीं होगा, बुद्धि की लगन या बाप का साथ है तो कुछ नहीं होगा। तो अकेले जा रहे परंतु डर नहीं है, जैसे कोई के ऊपर हाथ होता है तो वह निर्भय और शक्ति रूप होता है, तो कोई भी मुश्किल कार्य करने को तैयार हो जाता है। इसी रीति श्रीमत रूपी हाथ अपने ऊपर सदा अनुभव होगा। तो ये सब कहां से गुजरते हुए, हाथ और साथ, शमशान, फिर पहुंच जाओ गणेश मंदिर। इतना सब होते हुए भी गणेश मंदिर जब पहुंचे तब भटक गए, ये सोचो, और वहां भटकने के बाद फिर क्या हुआ, कमजोर हो गए, माया से घबरा गए, मूंज गए, हाथ और साथ छूटते ही क्या होता है, इसका गणेश मंदिर में डाल दो सब कुछ, क्या क्या होता है, क्या क्या होता है, उलझन होती है और मूंज जाती है, ये दो शब्द है। शूरवीर जो होते हैं वो कमजोर हो जाते हैं, तो जैसे हाथ साथ छूटा तो क्या होगा, कमजोर, मूंज जाना, उलझन, कंफ्यूज्ड स्टेट। हाथ और साथ छूट गया तो क्या हो जाएंगे, वेरी मच कंफ्यूज्ड। अध्यात्म में कंफ्यूजन की अवस्था बहुत डेंजरस अवस्था है। यहां तो आ गए, अब फिर से संकल्प आ रहा है वापस चला जाऊं, यहां सूट नहीं हो रहा है, यहाँ का ये ठीक नहीं, वहां का वो ठीक नहीं। अगला हनुमान मंदिर, फिर पहुंच गए कहां पर, हनुमान मंदिर। तो हनुमान जी हमें समझा रहे हैं माया की चाल क्या क्या होती है, माया कितनी चतुर है, कभी भी वार करने से पहले हाथ और साथ छुड़ाकर क्या करती है, पहले अकेला करती है, संगठन से दूर ले जाती है, हाथ साथ छुड़ाती है, मर्यादाओं को तोड़ने पर मजबूर करती है, और फिर अकेलेपन महसूस होता है। अगर हाथ और साथ छोड़ा ही नहीं तो फिर सर्वशक्तिवान साथ होते माया क्या कर सकती है। ऐसे सदा मास्टर सर्वशक्तिवान बनकर चलो। तो ये सब शिक्षाएं किसने दी, हनुमान जी ने दी। फिर आ जाओ शंकर जी का मंदिर। शंकर जी ने और एक बात हमको बताई, एक बार हाथ पकड़ लो, भक्ति में भी पुकारते एक बार हाथ पकड़ लो। अगर युद्ध के मैदान में जाना है तो कैसे जाते हैं, पूरी तैयारी के साथ। तो सोचो शंकर जी बैठे हैं और हमको ये समझा रहे हैं कि अभी तुमको युद्ध के मैदान में भेजने वाले हैं, तो तुम अपने पूरी तैयारी के साथ जाओ। और तुम्हारी तैयारी कौन सी है, तुम्हारे अस्त्र शस्त्र, और अस्त्र शस्त्र क्या है, आठ शक्तियां, और युद्ध का स्थल कौन सा है, दिनचर्या, कर्म क्षेत्र। कर्म क्षेत्र पर जाने से पहले पूरी शक्तियां चाहिए, नहीं तो दिन भर में ऐसा कोई कुछ बोल देगा, कुछ कर देगा और डिस्टर्ब हो जाओगे, और फिर उदास और फिर निराश। इसलिए शक्तियों पर काम करना है। मैं शक्तिशाली हूँ, मैं बहादुर हूँ, मैं बलवान हूँ, मुझ में सारी शक्तियाँ है। ये आठों शक्तियों पर चिंतन करते रहना है दिन भर। कहाँ मुझे सहयोग देना है, कहाँ समाना है, कहाँ सामना करना है, कहाँ निर्णय करना है, किसको परखना है, कितनी आत्माएं संपर्क में आ रही है, हर एक को परखना है, क्योंकि वहीं गलती हो जाती है आत्माओं को परखने में, और इसलिए तो झगड़े होते रहते हैं। फिर हमने परखा ही नहीं कि आत्मा कौन है, जीवन भर झगड़े चलते रहते। फिर आ जाओ नदी, तो सोचो ये नदी क्या है, कर्म क्षेत्र। शंकर जी ने तैयार किया, पहले ही चेतावनी दी कि तुमको कहाँ उतरना है, अब कर्म क्षेत्र पर। तो नदी में आ गए, नदी सोचो कर्म क्षेत्र है। युद्ध के मैदान पर सामना करने वाले होते हैं वह कभी भी शस्त्र को नहीं छोड़ते, रात को सोते समय भी शस्त्र नहीं छोड़ते। तो इसमें कहा सदा एवर रेडी रहना है। जब कोई माया का वार होता है उस समय बैठ सोचे कि कोई शक्ति अपना, ऐसा नहीं ना, सदा अलर्ट, सदा एवर रेडी, पूरी दिनचर्या अर्थात नदी, सदा अलर्ट, सदा एवर रेडी, शक्तियां इमर्ज। सोचो जैसे ही नीचे जा रहा है मन, उदास होने लगा है या मूंझने लगा है, सोचो क्या परिस्थिति है और कौन सी शक्ति को इमर्ज करना है मुझे। सहन करना है, चुप हो जाओ। सामना करना है, परिस्थितियों का सामना करो। परखना है क्या करना है, या विड्रॉ कर देना है, थोड़ी देर के लिए चुप ही हो जाना है, कुछ नहीं करना। कछुआ। फिर उसके बाद में पहुंच गए कहां पर, तीर्थस्थान। तो तीर्थस्थान पर क्या बनना है, बेगमपुर का बादशाह। सोचो बहुत बड़ा तीर्थ है, बेगम, गम की नगरी में बेगमपुर, बेगर होते हुए भी बेगमपुर का बादशाह। अगर एक भी कर्मेंद्रिया धोखा देती है, वशीभूत हो जाते हो, तो नशा खुशी खो जाएगी, फिर बादशाह की वजह क्या बन जाएंगे, मोहताज, कंगाल। तो एक तरफ मोहताज, एक तरफ बादशाह, इनमें दोनों में से चूज करना है मुझे, क्या बनूं। मोहताज अर्थात मैं चाहता हूं कि बहुत अच्छा खुशी रहे, पर रह नहीं रही है दिन भर में। को चाहता हूं कि मेरी स्थिति बहुत अच्छी रहे, शाम का योग बहुत अच्छा हो, पर हुआ ही नहीं, क्योंकि अधीन। मोहताज अर्थात कोई दूसरा शब्द, मोहताज दूसरा शब्द कोई, आश्रित, मोहताज और अधीन, पराधीन, मजबूर, कमजोर और मोहताज है बेचारा, और निर्भर, पैरासिटिक एग्जिस्टेंस, शरणागत, विवश, विवश, कई सारे शब्द हो सकते हैं। तो मोहताज हो गए, किसी के अधीन है, गुलाम है। लट्टू नहीं, लट्टू अलग है, लट्टू में आकर्षण है, यहां तो गुलाम ही। और लास्ट पहुंच गए कहां पर, फिर ब्रह्मा के मंदिर में। तो जैसे भक्ति में भी सदैव यही पुकारा है, सदा आपकी छत्र छाया में रहे। तो सोचो कि ब्रह्मा की छत्र छाया मुझ पर है, ब्रह्मा ऊपर है, मैं नीचे हूं, तो ब्रह्मा की छत्र छाया में हूं। ब्रह्मा हमारा क्या है, बैकबोन, जिनका सर्वशक्तिवान बैकबोन है, तो कितनी खुशी व खुमारी होनी चाहिए। और जब ये बैकबोन भूल जाता है तो क्या अपन, क्या होता है, अकेलापन आता है जीवन में, और जहां अकेलापन आता है वहां क्या होता है, फिर निराशा, दुख की लहर आती है, निराश हो जाते, उदास हो जाते, और इस उदासी से हर एक को कभी ना कभी गुजरना पड़ेगा, यह भी सत्य है। इस उदासी से और अकेलेपन से अध्यात्म के मार्ग में गुजरना पड़ता है कई बार। इसको कहते थे डार्क नाइट ऑफ द सोल, क्रिश्चियनिटी में इसको क्या कहा है, द डार्क नाइट ऑफ द सोल। ये किस में आती है, संसारी लोगों में नहीं आएगा, ये जो अध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं उनको अचानक कभी कभी ऐसा लगेगा कि मैं अकेला हूं, मेरा कोई भी साथी नहीं है, भगवान से इतनी बातें करता हूं कोई आंसर नहीं, बाकी किसी से कहो तो वो इंटरप्रिटेशन ही गलत कर देते हैं, मैं अपना किसी के साथ शेयर ही नहीं कर सकता क्योंकि ऐसा कोई मुझे दिखता ही नहीं कि जिसको मैं अपना दुख बता सकूं। और ये भी दुख वो दुख नहीं है संसारी लोगों का, एक अलग प्रकार का दुख है, किसको बताए? ये ज्ञानियों के द्वारा उत्पन्न हुआ हुआ दुख है, ज्ञानियों की वजह से उत्पन्न हुआ आया हुआ दुख है, तो इसमें तो कैसे किसको समझे? तो इस डार्क नाइट से गुजरना पड़ेगा। जैसे वो ये होता है ना टनल, कभी बार जाते हैं ना गाड़ियां गुजरती है, टनल आ जाता है बीच में, एकदम अंधेरा, कुछ भी नहीं दिखता है, पर एक आशा तो रहती है ना कि थोड़ी देर में आप क्या आएगा, प्रकाश, बस आने ही वाला है, बस आएगा ही अभी, बस ट्रेन थोड़ी देर में गुजर रही है, बस अभी निकले। वैसा ही ये भी है, डार्क नाइट ऑफ द सोल। तो ऐसी हमने 10 बातें देखी। सबसे पहली बात थी मैं कौन हूँ, शिव शक्ति हूँ, मुझ में सर्व शक्तियां है, अष्टभुजाधारी हूँ, अष्ट शक्तियां मुझ में है, दुर्गा हूँ। फिर हम पहुंचे काली के पास, काली कोई भी अगर एक भी शक्ति कमी हो गई तो माया वार करेगी, हार हो जाएगी माया के द्वारा। फिर तीसरा साथी और साक्षी शीतला देवी, सोचो मैं शीतला देवी हूँ, साथ और साक्षी, साक्षी अर्थात बीज रूप, साथ अर्थात अव्यक्त। फिर आ जाओ शमशान में, साथ और हाथ, अकेले चल रहे पर हाथ और साथ नहीं भूल रहे। फिर उसके बाद में आ जाओ गणेश मंदिर, तो जाने से पहले वहीं भटक गए और गणेश मंदिर में पहुंचे और क्या हो गए, उलझ गए। तो जैसे ही हाथ साथ छूटेगा उलझन और मूंज जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। फिर हनुमान जी ने समझाया कि माया कैसी है, बहुत चतुर है, माया बहुत चतुर है, तो क्या मास्टर सर्वशक्तिवान तुम हो, घबराना नहीं है, हाथ साथ छोड़ना नहीं है, हाथ साथ रहेगा तो तुम मूंझेंगे नहीं। फिर आगे शंकर जी के पास, शंकर जी ने क्या समझाया, तुम कहाँ जाना है तुमको, अब कर्म क्षेत्र पर, तो तुम्हें सारे शक्तियां सारे अस्त्र शस्त्र साथ में रखने हैं, औजार जो होते हैं ना, जो क्षत्रिय होता है ना उसको सबसे ज्यादा प्यारे कौन होते हैं, औजार, तलवार, ऐसे चिपका के सोते हैं, बहुत उनको मजा आता है, और अच्छे अच्छे औजार उनको चाहिए, नए नए औजार, परंपरागत पुराने पुराने औजार, उन्हें सबसे ज्यादा सबसे प्रिय क्या होता है, युद्ध, युद्ध की भूमि उनकी मंदिर है उनका, उसको माथे से लगाते हैं, पवित्र स्थान है उनके लिए, वो देश की रक्षा, आन बान शान सब कुछ है उनके लिए, आत्मसम्मान आत्मगौरव है, अस्मिता का प्रश्न है, और इसलिए औजारों की पूजा होती है भारत में, और किसी देश में नहीं होती है, होती है कहीं इधर होती है, औजारों की पूजा होती है, विश्वकर्मा जयंती, तो ये केवल यहाँ है। तो अपने औजारों की पूजा करनी, और हमारे औजार कौन से, हमारे अस्त्र शस्त्र कौन से, वेपन्स कौन से, टूल्स कौन से, शक्तियां। दूर से लग रहा है एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का अपमान कर रहा है, वो चुप है, परंतु वो क्या कर रहा है, अंदर लड़ाई लड़ रहा है, ये जीत है उसकी, उसके पास सहन करने की शक्ति है, वो लड़ाई है उसकी, ऊपर से हार दिख रही है परंतु जन्म जन्म की जीत है, इतना सूक्ष्म है। उसके बाद आ जाओ नदी, नदी पर क्या, ये कर्म क्षेत्र है, एवर रेडी रहना है, इधर अलर्ट रहना है, एकदम अलर्ट। नदी में मगरमच्छ है, भयंकर जानवर है, वेल, क्या क्या जानवर है पता नहीं, और कभी भी तू कुछ भी हो सकता है, नाव उलट सकती है, तो नदी में अलर्ट एवर रेडी। फिर आ जाओ तीर्थ स्थान, तो तीर्थ स्थान पर दो मंदिर बने हुए, एक है मोहताज कमजोर, और दूसरी तरफ है बेगमपुर का बादशाह शक्तिशाली। मैं कौन से मंदिर में मूर्ति बनना चाहता हूं, कमजोर बनना चाहता हूं, क्या बनना चाहता हूं, तो निश्चिंत। और लास्ट में ब्रह्मा का हाथ छत्र छाया है, मेरे ऊपर है, बैकबोन है। अगर अकेले हो गए तो क्या हो जाएंगे, निराश, उदास, अकेलेपन में क्या आता है, उदासी आती है। तो आज की सबसे पहला होमवर्क ये मुरली पढ़नी है, टेस्ट देनी है। दूसरा होमवर्क ये मुरली में 8 शक्तियां जो है, 8 पावर कार्ड्स बनाने हैं, छोटे छोटे अलग अलग कार्ड्स, ऊपर नाम लिखना है इंग्लिश या हिंदी, और नीचे एक नया चित्र बनाना है उसका, उस शक्ति के बारे में। ये हो गया सेकेंड मुरली, और थर्ड मुरली जो है 27/5, तो लोकेशन 61 से लेके तो 70 के आधार पर इसको आपको रिवाइज करना है। तो ये आज का होमवर्क है। कैलाश की गृह स्वामिनी शिव की हूँ मैं अर्धांगिनी। निर्माण मेरे अस्तित्व का, खंडन न हो दायित्व का, अब ना कोई अवरोध हो, अब मेरे मन का बोध हो। गिरिजल में ऊर्जा शिव से है, गौरी में शिव से शक्ति है। ये गीत हम लोग ने बजाया था पूरा 84 दिन। एक भट्टी चली थी अक्टूबर में 2021 में, एंजल ऑफ लाइट, उसमें प्राणिक ऊर्जा और प्राणिक सारा फर्स्ट टाइम डिस्कस किया था। गिरिजल में ऊर्जा शिव से है, गौरी में शिव से शक्ति है, ये दो नहीं है एक है, अनुभूति सम अभिव्यक्ति है। शिव धैर्य है, हर श्वास शिव के नाम है, यह प्रेम भी अविराम है। शिव धैर्य तो संयम शिवा है, नयन शिव तो दृष्टि शिवा, शिव शक्ति से ही पूर्ण है, शक्ति के वो सिंदूर है, गौरी के गौरव के लिए जो हो रहे अब दूर है। ओम शांति।
बंधन से परे जो रच दिया सो वो करे।